ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपक कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्री वृंदावन धाम सभी धाम उसमें निवास करते हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण बात है। सब धाम श्री वृंदावन में निवास करते हैं और भगवान ने कई बार इस बात को अलग अलग लीलाओं के माध्यम से सिद्ध किया है कि वृंदावन धाम एक परिपूर्ण धाम है। और एक बार वृंदावन धाम जाने के बाद किसी और धाम में जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी सब बाकी धाम में हम जा सकते हैं, तीर्थों में जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार श्री वृंदावन धाम गए तो सभी धामों में दर्शन करने का लाभ प्राप्त होता है। अगर आपने चार धाम की यात्रा की, यानी बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर रंगनाथ जी और द्वारका, फिर भी आपकी चार धाम की यात्रा भी अपूरी हो मानी जाती है जब तक हम वृंदावन धाम की यात्रा नहीं करते हैं। और अगर वृंदावन धाम की यात्रा करते हैं तो इन सभी चारों धामों को यात्रा करने का लाभ एक साथ ही मिल जाता है, ऐसा शास्त्र में प्रमाण है। तो वृंदावन धाम जब भी गौलोक से अवतरित हुआ तो उसमें यमुना जी पूरी और गोवर्धन पूरे अवतरित हुए। केवल पूरा गौलोक वृंदावन अवतरित नहीं हुआ, उसका 84 कोस का हिस्सा जो है वो अवतरित हुआ। और हम जानते हैं कि राधा रानी की विशेष इच्छा थी, आज अगर पृथ्वी पर वृंदावन धाम है और आज अगर हम वृंदावन धाम जाते हैं, जा सकते हैं, तो वो केवल राधा रानी की परम करुणा कृपा है, क्योंकि उन्होंने ही गौलोक धाम में भगवान से कहा था कि हम तभी आएंगे जब वृंदावन, गोवर्धन और यमुना जी उपस्थित रहेंगे। तो कृष्ण ने कहा था कि आपके मन को हम तो पहले से जानते हैं, इसलिए आप ये कहने के पहले ही हमने श्री वृंदावन धाम को पृथ्वी तल पर 84 कोस का हिस्सा यमुना जी और गोवर्धन के साथ में भेज दिया है। तो जब भगवान का अवतरण हुआ तो हम जानते हैं कि सबसे पहले उन्होंने यमुना पर कृपा की, क्योंकि उन्होंने वसुदेव को और देवकी को दर्शन दिया और कहा कि मुझे, मैं बाल्य रूप में आऊँगा, आपके सामने प्रकट हो जाऊँगा, फिर वो बाल्य रूप को आप लेकर जाना यमुना पार और गोकुल में यशोदा नंद के घर पे छोड़ के आना। तब जानते जब बाहर निकले सभी सांखलियाँ टूट पड़ी, श्रृंखलाएँ, सभी पहरेदार सो गए और वो बाहर निकले तो धुआंधार वर्षा हो रही थी और यमुना जी जो है उसको बाढ़ आ रही थी, तूफान सा मच रहा था उस समय। अभी जाना तो है यमुना के पार, तो वो यमुना जी में उतर गए तो एड़ी तक उतर गए, घुटने तक उतर गए, उसके बाद में कमर तक, उसके बाद छाती तक, गले तक, और डूबने लगे। तो उस समय भगवान ने एक जगह लिखा है कि भगवान ने अपने दिव्य कोमल कोमल चरण कमल बाहर निकाले और यमुना जी को अपने चरणों का स्पर्श दिया, क्योंकि यमुना जी बहुत समय से व्याकुल थी भगवान का अवतार होने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान का सेवा करने के लिए, चरणों का स्पर्श करने के लिए। तो भगवान ने अपने आप ही चरणों के दर्शन दिए, चरणों का स्पर्श दिया और यमुना जी द्विभाजित हो गई, बीच में रास्ता निर्माण हो गया और वसुदेव जी बड़े ही इत्मीनान से, प्रेम से शेष नाग के छत्र छाया में गोकुल तक पहुँचे। एक जगह ऐसे वर्णन आता है कि श्री कृष्ण भगवान जैसे ही पानी ऊपर 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 आने लगा तो श्री कृष्ण भगवान गिर पड़े पानी में, पूरी तरह से डूब गए। और वसुदेव जी ने पुकारना शुरू किया, अरे कोई लो कोई लो, अरे कोई लो मेरे लाला को ले लो, कोई ले लो। तो जिस जगह पर ये घटना हुई उसका नाम पड़ा कोयलो घाट, जिस घाट में ये घटना हुई उसको आज भी नाम है कोयलो घाट। तो एनीवे दोनों बातें सत्य हैं, अलग अलग समय के अनुसार जब अलग अलग भगवान तो संभवामी युगे युगे हमेशा आते रहते हैं, ऐसे नहीं कि एक ही बार आए हैं, हर एक दिव्य युग में एक बार आते हैं, वो हर एक युग में अलग अलग रूप में भी आते हैं, अनंत रूप धारण करते हैं। तो एक कल्प भेद के अनुसार वो चरणों का स्पर्श दिया और एक कल्प भेद के अनुसार वो खुद कूद पड़े, और जैसे जमुना जी विभाजित हो गई तो तुरंत भगवान को उन्होंने पकड़ लिया और फिर टोकरी में रख के चले गए। वो कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे पहले उन्होंने यमुना जी पर कृपा किया, यमुना जी को अंग संग दिया, यानी कि अवतार लेने के पश्चात तुरंत ही यमुना जी को चरणामृत बना दिया, चरण स्पर्श करने से भी चरणामृत बन गया और स्नान कर दिया, कूद के अंदर भी अंग संग दिया और यमुना जी को चरणामृत बना दिया। इतना यमुना जी का भाग्य है, कहते यमुना जी तो उछल क्यों रही थी इतनी, क्योंकि वो इतनी बड़ी उत्सुक थी, शी वॉज सो एंक्शियस सो ईगर टू सी कृष्णा टू हैव दर्शन। तो ये यमुना जी का जो भाग्य है वो बहुत बड़ा भाग्य है, और आज हम देखते हैं कि आज की तारीख में यमुना जी कितनी स्वच्छ बह रही है वृंदावन धाम में, इतने सारे वीडियोज़ आए हैं, इसके पहले इतना सारा आंदोलन हुआ यमुना जी के अंदर, सभी वो इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट डाल रहे हैं और कई मलमूत्र भी डाल रहे हैं, मलमूत्र जो शहरों का, हाँ जहाँ पर धाम भी नहीं है वैसे, ऐसे शहरों का मलमूत्र भी उसमें प्रवाहित किया जा रहा है। फिर वो दिल्ली से कट हो गई है और उसका हरियाणा पंजाब में उसका प्रवाह घुमाया गया है, और क्या क्या बताएं अभी, वो तो बहुत दुख की बात है। लेकिन जैसे ही ये लॉकडाउन हो गया कोरोना का, तो इंडस्ट्री बंद हो गई, तो इंडस्ट्री का जो मलमूत्र है, इंडस्ट्री का जो वेस्ट है, इंडस्ट्री का जो मल है, वो सब गिरना बंद हो गया। और एक महीने के अंदर यमुना जी इतनी स्वच्छ हो गई कि हाथ डालेंगे तो तल भी दिखाई पड़ता है, हाथ भी दिखाई पड़ता है, सब कुछ दिखाई पड़ता है। तो इतना काला काला गंदा और मराठी में कहते हैं ना गडूड़ ऐसा पानी हुआ करता था, अरे लोग तो उसके बदबू से भी बेहोश होते थे, और कितने लोगों को तो फेफड़े की बीमारी भी हो गई अस्थमा वाली, और बहुत सारी इतनी गंदी हवा वहाँ पर रहा करती थी, मानव जाति के लिए बहुत घातक है। और एक एक पानी के अंदर जो होता ना इंडेक्स, वो कहते हैं कि वो पशु के लिए भी पर्याप्त नहीं है, और मछली भी सब मर गई उसके अंदर की, इतना जहर इतना विष उसमें रहा करता था। एक ही महीने के अंदर जब मनुष्य को कैद किया गया ना, जब मनुष्य को रोक दिया गया, अरे तुरंत यमुना जी स्वच्छ हो गई। और यमुना जी क्या, गंगा जी का फोटो भी आए हैं, वो हरिद्वार में इतनी स्वच्छ गंगा है, इतनी स्वच्छ गंगा है। वैसे तो बद्रीनाथ और ऊपर के धाम में तो बहुत स्वच्छ गंगा जल होता है, लेकिन नीचे आते आते फिर वो जनता जो है ना, वो मनुष्य प्राणी ऐसा है कि वो कोई चीज़ को अच्छा छोड़ता ही नहीं। बाकी कोई भी जीव जो है इस पृथ्वी पर, कोई भी जीव वो किसी भी निसर्ग नियम का लोप नहीं करता है। कोई भी जीव, आप पंछी लो, कीटक लो, मच्छर लो, कोई भी जीव प्रकृति के सौंदर्य को, प्रकृति के पवित्रता को कभी नष्ट नहीं करता है, कोई नियम भी नहीं तोड़ता है। मनुष्य ऐसा एक जीव है, वो सारे नियम तोड़ता है। वो प्रकृति के हर जीव का एक समय होता है, भाई नर मादी एकत्र होते हैं, अंडे डालते हैं, अपने संतान उत्पन्न करते हैं, लेकिन मनुष्य ऐसा एक जीव है, वो 12 महीने अपना ये काम करते रहता है, और कोई मुहूर्त नहीं है, कोई समय नहीं, दिन नहीं, रात नहीं, और प्रकृति को गंदा करते रहता है। तो इस तरह से यमुना जी के विषय में थोड़ा मुझे याद आया कि यमुना जी अभी कितने सुंदर और निर्मल बह रही है, और एकदम स्नान करने में, आचमन करने में इतना आनंद का अनुभव हो रहा है, लोग वहाँ पर जो है वो भी इतना आनंद को प्रकट कर रहे हैं, बार बार अलग 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 वीडियो बना के भेजते हैं, और हमको थोड़ा मन को प्रसन्नता देते हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ भी पहुँच नहीं पा रहे हैं, ठाकुर जी की इच्छा से बम्बई में बैठे हैं तो नहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन दर्शन तो हमें भक्त लोग वहाँ के कराते रहते हैं, और वो कैसा है कि ऐसा सुनहरा मौका पता नहीं इस सदी में कब आएगा ये भी उनको चिंता है। तो रोज़ स्नान करते हैं, तो रोज़ स्नान करते करते फोटो निकालते हैं। वो विदेशी श्रद्धालु लोग भी वहाँ पर रहते हैं, वो भी विदेशी लोग अपने विदेशी बालकों को लेकर यमुना जी में आनंद लेते हैं। तो यमुना जी जो है ना वो परम पवित्र परम कृपादायिनी है। यमुना जी भगवान को इतनी प्रिय है कि सबसे पहले भगवान ने उन पर कृपा किया, और आगे आप पढ़ेंगे ना, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चला कि भगवान की जो अधिकतम लीलाएं हैं वो सब यमुना जी के किनारे पे या यमुना जी के अंदर या यमुना जी के ऊपर बोट, इस प्रकार से उन्होंने यमुना जी के सानिध्य में बहुत सारी लीलाएं की हैं। जैसे आप देखेंगे भगवान को सब लोग बोलते हैं मुरली मनोहर, है ना, तो हमको लगता है कि अरे सारे विश्व में पूरे निर्माण में भगवान ने केवल अपने वो ही एक ऐसे व्यक्ति है जो बहुत सुंदर मुरली बजाते हैं। लेकिन हम लोगों को ये पता है या नहीं है पता नहीं, लेकिन भगवान को मुरली बजाना सिखाया किसने? भगवान को मुरली बजाना सिखाया राधा रानी ने। राधा रानी से पहले पहले धड़े लिए उन्होंने, मतलब पाठ, मुरली पाठ जो है ना वो राधा रानी से सीखा। और कहाँ सीखा? यमुना किनारे में कदम के तले बैठकर, राधा रानी ऊपर बैठी है, भगवान नीचे बैठे हैं, वो मुरली सिखा रही है, मुरली बजा रहे हैं। फिर भगवान ने, उनका एक और नाम है नटराज, बहुत सुंदर नाच करते हैं, ऐसा नाच करते हैं यशोदा मई जो नाचते हैं ना भगवान, तो दो दो मील तक उसके पैर के घुंघरू जो है उड़ जाते हैं, एक वन से दूसरे वन में चले जाते हैं, इतना धुआंधार नाचते हैं। और वो भी ऐसा क्या कहते हैं हमारे भाषा में, रावड़ी डांस नहीं करते, कोमल सुंदर बहुत ही कलात्मक ऐसा मनमोहक डांस करते हैं वो। अरे उनका नृत्य देखने के लिए ना वो स्वर्ग लोक से सब लोग नीचे उतर आते हैं, आकाश में जमा हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ उधर ऊपर के स्वर्ग लोक में कैसा है ना, एक एक लोक है ऐसा, एक लोक ऐसा है जिसमें जन्मता ही सब लोग बिना ट्रेनिंग के नृत्य में एक्सपर्ट रहते हैं। अब बंदर कैसे रहता है? कोई बंदर का कोई क्लास है क्या, जिमनास्टिक क्लासेस ऑफ मंकीज, ऐसा कोई है क्या? बंदर जन्म से ही एथलीट चैंपियन होता है। अरे आप किसी ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट को खड़ा करो बंदर के सामने, वो बंदर उसको तुरंत हरा देगा, गोल्ड मेडल छीन लेगा उसका। क्यों? क्योंकि जन्म से ही बंदर एथलीट चैंपियन होता है, हर एक बंदर जन्म से ही। उस प्रकार से ये देवता लोग जो हैं उसमें कई लोक हैं, तो कुछ लोक में गाने वाले लोग रहते हैं, वो जन्म से ही सुंदर इतना गाते हैं, इतना मधुर गाते हैं, दिव्य गाते हैं। और कुछ लोग ऐसे नृत्य करने में बहुत निपुण हैं जन्मतः, कुछ लोग ऐसे हैं भगवान के द्वारा निर्मित किए गए स्वर्ग लोक जिसमें वाद्य बजाने में लोग बहुत कुशल हैं। तो ऐसे यक्ष किम पुरुष गंधर्व किन्नर ऐसे कई लोग हैं देवताओं के, तो वो सब इकट्ठा होते हैं जब भगवान नृत्य करते हैं या मुरली बजाते हैं या और कुछ कहते हैं, सुनने के लिए आते हैं, अरे क्या कौन सा ताल बजा रहे, कौन सा सुर बजा रहे। और कभी कभी भगवान है ना वो, अभी हम लोग तबला लेते हैं, सितार लेते हैं, वीणा लेते हैं, बहुत सारा अपना वाद्य होता है, कोई गिटार लेते हैं, कोई मैंडोलिन लेते हैं, कोई ढोलक बजाते हैं, कोई हारमोनियम लगाते हैं, बहुत सारे बाहरी ऐसे मतलब हमारे शरीर के बाहर के ऐसे अवजार हैं या वाद्य हैं जो हम बजाते हैं। लेकिन भगवान जो है ना वो अधिकतर उनके जो भी डांस करते हैं और गाते बेते हैं ना, वो केवल तीन रहते हैं उनके पास प्रधान तीन वाद्य। एक उनकी मुरली रहती है, एक गोपियों के कंगन रहते हैं वैसे छुम छुम बजाते हैं हाथ, और एक है गोपियों के पायल, वो पायल बजाते हैं। हाँ बाकी तो बजाते हैं सब लोग, आप देखें वो अष्ट सखी के चित्रपट में देखेंगे ना आप, कोई सितार लेके बैठी है, कोई कुछ बजा रहे हैं, कोई कुछ बजा रहे हैं, वो सब बजाते हैं, उसमें सब एक्सपर्ट हैं। लेकिन एक विशेषता ब्रज में ऐसी है कि मुरली और चरणों के पायल और कंगन ये बजाकर भी दिव्य ध्वनि उत्पन्न होता है, भगवान रास की शुरुआत इसी से करते हैं। तो ये जो नृत्य का मामला है वो भी इतने मशहूर है, भगवान यशोदा देवी तो कहते तीन तीन बार कस कस के तीन तीन घुंघरू बांधते थे पैर में उनके, और आने के समय पे कभी कभी एक ही रहता था, कभी कुछ रहता नहीं था, इतने जोरदार नाचते थे। तो ये नृत्य जो है जिसके वजह से उनका नाम नटराज पड़ा है, ये भी उनको राधा रानी ने ही सिखाया है। उसकी एक सुंदर लीला मुझे याद आ रही है, बताता हूँ आपको मैं। इतने चतुर हैं भगवान ना, कभी कभी बोलते हैं चालाक, तो कैसे है कि वो नृत्य सिखा रही है। अभी ये भी इतने एक्सपर्ट हैं कि इनको कुछ भी सिखाओ वो तुरंत पिकअप कर लेते हैं, इतने तेज बुद्धि के हैं। जैसे वो सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए ना, तो कहते हैं कि 64 कला जो है वो 64 दिन में सीख गए पूरी, तो लोगों को 12 साल लगते हैं। 64 कलाएं जो है वो परिपूर्णता के स्तर पर एक दिन में एक कला पूरा ऐसे ही सीख लिया। अरे 64 सेकेंड भी काफ़ी थे उनको वैसे, लेकिन 64 दिन ले लिया उन्होंने, कोई बात नहीं। तो वैसे इतने तेज बुद्धि वाले, तेज तर्रार भगवान जब राधा रानी उनको स्टेप सिखाती हैं तो तुरंत पिकअप कर लेते हैं। लेकिन अभी तुरंत पिकअप कर ले तो क्लास खत्म हो जाएगा ना, समझे। हमारा क्लास आधा घंटे का है और हमने 10 मिनट में आपको बता दिया, तो 10 मिनट क्लास खत्म हो जाएगा, तो फिर संग कैसे मिलेगा राधा रानी का। तो संग बढ़ना चाहिए ना, संग का समय बढ़ना चाहिए। तो फिर वो जानबूझ के रॉन्ग स्टेप डालेंगे, गलत ही डालेंगे। हाँ, वो भी इतनी भोली भाली बेचारी राधा रानी, इतनी भोली भाली। अरे कन्हैया, अरे ऐसे डालो, फिर दिखाएगी उसको, फिर ये गलत डालेगा और कुछ देर बाद में समझ में आएगा उसको राधा रानी को, अरे तो उल्लू बना रहा है, सब पता है उसको, लेकिन मुझे जानबूझ के मेरा टाइम पास करा रहा है। तो फिर राधा रानी रूठ के चले जाती है और फिर रूठ करके बांध करके बैठ जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये राधा रानी का जो क्लास होता था डांस क्लास, ये भी यमुना किनारे होता था। फिर भगवान नौका विहार करते हैं, वो भी यमुना जी के अंदर। यमुना जी के अंदर भगवान ने गोपियों का जो वस्त्र है वो किनारे पे चुराया था। यमुना किनारे भगवान ने भोजन किया था, ऐसे कमलाकार सुंदर बैठते थे और यमुना को दर्शन देते हुए, यमुना देख रही है उनको फर्स्ट क्लास। फिर यमुना किनारे बैठकर सब भोजन कर रहे हैं, एक दूसरे का छीन के खा रहे हैं, एक दूसरे का प्रेम से खिला पिला रहे हैं। ऐसा सुंदर यमुना जी पर भगवान ने कृपा किया है। वो चीरहरण लीला, वस्त्र हरण भी वो यमुना किनारे हुई थी। यमुना जी, बलराम जी ने भी लीला किया है अपना रास लीला। यमुना जी में भगवान ने महारास रचा है, शरद वाला और वसंत ऋतु वाला, जितने भी रास हुए हैं यमुना किनारे हुए हैं। यमुना के बिना भगवान की लीला तो पूर्ण ही नहीं होती है। यमुना का लोकेशन, फाउंडेशन बिना भगवान का कोई लीला संपन्न ही नहीं होती है। इतना भगवान यमुना पर प्रेम करते हैं और यमुना जी उनकी लीलाओं का अविभाज्य अंग है। हाँ, इनडिस्पेंसिबल है, वो इनडिविजिबल है, उसके बिना तो ब्रज पूरा ही नहीं है। ब्रज तो पूरा तब होता है जब वृंदावन धाम की भूमि, यमुना जी का जल और गोवर्धन पर्वत है, तो ब्रज धाम पूरा होता है। तभी इतनी कृपा करी, एक एक लीला पर हम लोग एक एक घंटा बोल सकते हैं। ऐसे अनंत लीलाएं भगवान ने यमुना किनारे, यमुना के अंदर बोट के अंदर बैठकर और क्या क्या नहीं किया उन्होंने। तो यमुना जी की जो बड़ी बहन है वो है गंगा देवी, और गौलोक धाम से इनका निर्माण हुआ था। भगवान का जो धाम है ना, जहाँ भगवान चिरंतन निवास करते हैं, नित्य निवास करते हैं, वहाँ पर उनका निर्माण हुआ था। और वहाँ से भगवान के आदेश के अनुसार ही ये दोनों नदियाँ, दोनों बहनें, दिव्य देवियाँ पृथ्वी पर आई थी, यानी ब्रह्मालोक, ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करके ब्रह्मालोक, फिर स्वर्गलोक, फिर पृथ्वीलोक पर उन्होंने आ गई थी वो। तो गंगा जी जब आई तो दूसरे रास्ते से चली गई, वो गोमुख के रास्ते में गई, और यमुना जी गई वो कलिंद पर्वत पे गई और वहाँ से यमुनोत्री धाम से प्रकट हुई। और कृष्ण के अवतार में यमुना जी को प्राधान्य मिला, यमुना जी के सान्निध्य मिला भगवान का, और कृष्ण के लीला में गंगा जी को सान्निध्य नहीं मिला। तो गंगा जी ने अपनी छोटी बहन से बोला, गंगा देवी, यमुना देवी, अरे तुम कितनी भाग्यवान हो, कुछ हमारी भी कुछ सिफारिश करो भगवान से, ताकि हम पर थोड़ी कृपा हो जाए। इतने पर पूर्ण पुरुषोत्तम भाव में, पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप में, अपनी 16 कलाएं परिपूर्णता के साथ भगवान इतनी चटपटी लीलाएं कर रहे हैं और तुम्हें इतना अंग संग दे रहे हैं, इतना सानिध्य दे रहे हैं, थोड़ी कृपा हम पर भी हो जाए, तो थोड़ी हमारी तरफ से निवेदन तो कर लो। तो यमुना जी भगवान से निवेदन करती है, और भगवान कैसे है ना, अरे हम लोग इतने भाग्यवान लोग हैं, हमारे भगवान जो है वो सबकी सुनते हैं। हम लोग है ना खाली पुकारते नहीं उनको, हम लोग पुकारने में थोड़ा सा आलस्य करते हैं, सोचते क्या पुकारना है, इतना सब एंजॉयमेंट करने का मौका है, क्या पुकारे उनको। तो जो उनको हृदय से पुकारता है ना, वो उनके पास ही रहते हैं हमेशा। ये बात समझना बहुत जरूरी है। हम लोग बोलते हैं किधर है भगवान, दिखते ही नहीं है। आप बोल रहे हो वो सुनते भी है, किधर है वो? कुछ लोग कहते हैं कि वो उनके पास, उनके कान नहीं है, उनके नाक नहीं है, उनके आँख नहीं है, उनका स्वरूप नहीं है, वो निराकार है। अरे भाई है क्या ये भगवान, बताओ पहले, ऐसे बात करते लोग। लेकिन भगवान एक परम पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो हमारे जैसे उनका विग्रह भी है, शरीर भी है, हमारा जैसा मरने वाला नहीं है, मृत्यु को प्राप्त होने वाला शरीर नहीं है, वो दिव्य शरीर है उनका, सच्चिदानंद शरीर है। तो उसके अंदर दिव्य कान भी है, दिव्य नेत्र है उनके, सब कुछ है। और वो छोटे से भी हो सकते हैं और वो विश्वरूप धारण भी कर सकते हैं। उनका तो दिव्य शरीर का सब गुण धर्म है उनके अंदर, परम सिद्ध शरीर है उनका। तो सुनते हैं, खास करके ना वो हृदय से उनको पुकारते ना, उनको तुरंत सुनते हैं। जिस पुकार में केवल उनके लिए पुकार हो, अब हमारा कैसा है, हम ना चार चार लोगों को साथ में पुकारते हैं। कुछ हो गया ना, अरे गणेश जी महाराज, अरे शिव जी महाराज, अरे देवी महारानी, अरे कृष्ण भगवान, अरे विष्णु, अरे राम, ये सबको होलसेल में पुकारते हैं हम लोग। तो उनके अंदर भी वहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा होता है, अरे किसको बुला रहे हैं, कौन किसको जाना है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि इष्ट देव जो है ना वो एक होना चाहिए, और एक वो है वो परम भगवान जो है वो इष्ट देव होना चाहिए। और उनको पुकारने से श्रद्धा भी होनी चाहिए, वो सुनते हैं। सब जगह उनके कान फैले हुए हैं, सब जगह उनकी आंखें फैली हुई है, सब जगह वो दर्शन करते हैं, देखते रहते क्या चल रहा है। उनके नज़रों से कुछ चीज़ छुपती नहीं है, हम लोग क्या बोलते हैं वो सब सुनते रहते हैं। अरे परमात्मा के रूप में अंदर बैठे सब कुछ निरीक्षण करते रहते हैं, ऐसे दृष्टा हैं भगवान। तो जो कहने का तात्पर्य यह था कि जो प्रामाणिक भक्त हैं, जो उनको हृदय से पुकारते हैं, वो उनकी बात सुनते हैं, और केवल सुनते नहीं हैं, उनको रिस्पांस भी देते हैं। अरे हम तो अभी इतने तो कोई भक्त वक्त है नहीं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं भक्ति करने की, हम तो भक्त कहने के लायक नहीं है। अरे भक्त तो वो होता है जो भगवान से विभक्त नहीं होता है, वन हु इज नॉट डिसयूनाइटेड फ्रॉम गॉड, ही इज भक्त, जो कभी अलग ही नहीं है भगवान से, एक ही है भगवान के साथ, भावना से, सेवा से भगवान से जुड़ा हुआ है, उसी को भक्त कहते हैं। हम लोग तो कैसे हैं, तड़ैत मड़ैत, मतलब क्या, कभी कभी वो वाटर के अंदर, कभी जमीन के अंदर, कभी बीच में, जब चाहे तभी भोग लेने में व्यस्त हैं, जब चाहे तभी भगवान भगवान एकदम भाव से आते हैं आगे, फिर वापस इंद्रिय भोग में लिप्त हो जाते हैं। हमारा कैसा है, 50-50, 60-40, 70-30, ऐसा हमारा मामला है। जन्माष्टमी आए तो 99% होता है, फिर बाकी के दिन पे फिर वो 0% भी हो जाता है। तो इसको भक्त नहीं बोलते। लेकिन जो एक ही भगवान के पीछे लगा हुआ है और हृदय से उनको पुकारता है, उसको बड़े प्रेम से सुनते हैं, उसका इच्छा पूरी भी करते हैं, भले दर्शन न दे आपको, लेकिन आपके जीवन में है वो, और आप पुकारो वो सुनते हैं। और आपके जीवन में दर्शन ना भी देंगे और उनकी आवाज़ भी आपको सुनाई नहीं पड़ेगी, फिर भी आपके जीवन में वो दखल देते हैं और सहायता भी करते हैं। सबको श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान बेचारे इतना हम लोग ठुकराते हैं उनको, हाँ कभी कभी बोलते हैं मानते नहीं उनको, ऐसे उनके अस्तित्व को ऊपर भी क्वेश्चन करते हैं हम लोग, फिर भी भगवान हमारे साथ लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, हमको छोड़ते नहीं हैं। जैसे माँ बाप जो होते हैं ना, कभी बच्चा घर छोड़ के जाता है लेकिन माँ बाप कभी हृदय से उसका रिश्ता तोड़ते नहीं, मन में कि मर जा तू, अब आज से हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, ऐसे बोलने के बाद भी कभी 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 बोलते हैं ना कि तू मिला मजा करता आज पसंद, ऐसे बोलते हैं, लेकिन वो बोलने में बोल दम नहीं रहता है, उसके बाद में वापस प्रेम वैसे ही रहता है, वो खाली क्रोध में बात करते हैं। लेकिन वो हृदय से कभी माँ बाप अपने बालक को त्याग नहीं करते, वैसे भगवान हमने कितना भी ठुकराया तो उनको त्याग नहीं करते। तो गंगा देवी का जो बिनती है वो जमुना देवी सुनाती है भगवान को, और भगवान एक अद्भुत लीला करते हैं। गंगा जी को, गंगा जी ने क्या रिक्वेस्ट किया था कि थोड़ा हमको भी आश्रय मिले ब्रज में, ब्रज में भगवान लीला कर रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम लीला कर रहे हैं, सभी कलाओं के साथ, सभी गुणों के साथ, तो हमारा भी कुछ वहाँ पर हाजिरी लग जाए। तो एक दिन क्या हो रहा था, ध्यान से सुनिए, इतनी सुंदर कथा है। देखो एक भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए कैसा भगवान लीला रचाते हैं, हाउ ही ऑर्गेनाइजेस सच ब्यूटीफुल पास टाइम्स, कैसा स्टेज करते हैं वो लीला। तभी नंद बाबा बैठे हुए हैं, सब बड़े बड़े बुजुर्ग ग्वाल बाल बैठे हुए हैं, और एक साधु महाराज आए हुए हैं और वो गंगा जी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। हाँ, कथा चल रही है, तो कथा में सब लोग बैठे सुन रहे हैं। वो कथा में वाले क्या बोल रहे हैं कि एक बार गरुड़ जी अपना जो भोज्य यानी उनके लायक जो भोजन होता है ना, सांप वगैरह, तो सांप को पकड़ा उन्होंने अपना भोजन और उसको लेकर वो जा रहे हैं, कोई एक जगह बैठ के खाऊंगा उसको अच्छी तरह से शांति से। तो दोनों ऐसे जो होते ना, वो क्या बोलते पंजे बोलो उसको, या होते ना पांच पांच नाखून वाले, ऐसे पकड़ के जा रहे उड़ रहे। और वो सांप कैसा लंबा होता ना बहुत, कुछ हिस्सा पकड़ा हुआ है कुछ हिस्सा लटक रहा है। तो कहते हैं कि वो गरुड़ जी उड़ते उड़ते गंगा जी के ऊपर से उड़ने लगे, चलो भाई गंगा जी पार करके कहीं और बैठेंगे, ऐसा भाव होगा उनका। तो थोड़े झुक गए नीचे, तो क्या हुआ वो जो सांप की जो पूंछ थी वो गंगा जी के जल को स्पर्श कर गई। जैसे ही उस सांप की पूंछ का स्पर्श गंगा जल से हुआ, उसी समय उस सांप के योनि में जो जीव था उसकी मुक्ति हो गई और उसको चतुर्भुज विष्णु दूत का वैकुंठ वाला शरीर प्राप्त हो गया तत्क्षण। और गरुड़ को पहले तो उड़ रहा था उधर देखते हुए, तो हाथ में दोरी जैसा था ना वो सांप, अचानक वो हाथ ऐसा था ना, वो ऐसा फैल गया, ऐसा बड़ा हो गया हाथ, मतलब वो जो शरीर चार भुजा वाला शरीर मनुष्य जैसा वैकुंठ वाला शरीर हाथ में आ गया, तो हाथ में फैल गया ना अपने आप। तो वो नीचे देखते रहे हाथ कैसे फैल गया, तो देखते हैं कि जो मेरे नीचे सांप के रूप में था अभी वो विष्णु दूत बन गया है, वैकुंठवासी शरीर प्राप्त किया है। तो उसने अभी खाने वाने का प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि वो सांप तो बज रहा नहीं वो तो उसको अपने ऊपर बिठाया, वाहन बने उसके और एक कंधे पर बिठाया और वैकुंठ ले गए उसको। गरुड़ जी तो विष्णु तत्व है ना, वो बहुत विशाल महान जीव है, वो पृथ्वी पर रहते इधर उड़ते लेकिन वो तो विष्णु तत्व है, उनको वैकुंठ में भी एंट्री है। तो वो सीधे उस जीव को जिसने वो सारूप्य नहीं भगवान की जैसा रूप प्राप्त करके जो मुक्ति प्राप्त की उसको छोड़ने के लिए वो वैकुंठ गए, वैकुंठ छोड़ के आए। अरे ये कथा कौन सुन रहे हैं, नंद महाराज सुन रहे हैं, सारे ग्वाल बाल सुन रहे हैं और बैठे हुए हैं गोवर्धन के बीच में। तो अपने नंद महाराज एकदम कैसे पता है ना, नंद महाराज वो ब्रजवासी लोग हैं ना, बड़े भावुक होते हैं, बड़े सरल हृदय होते हैं, बहुत कोमल हृदय होता है उनका और इतना शुद्ध हृदय होता है कि कुछ बोलेंगे ना इतने भोले भाले होते हैं बेचारे। तो जैसे ही कथा सुनी ना, अरे नंद बाबा जो है ना खड़े हो गए तुरंत, बोल रहे अभी हमको गंगा जी जाना है, अभी हम गंगा जी जाएंगे। तो उसमें कृष्ण भी थे बालक रूप में बैठे कथा सुन रहे हैं, और जैसे नंद बाबा राजा है वो बोले चलो, तो सब लोग चले हो गए रेडी हो गए जाने के लिए। अरे कृष्ण भगवान को लगा अच्छा नहीं है, ब्रज में रहते वो कहाँ जा रहे अभी, क्योंकि गंगा जी तो ब्रज में है नहीं, तो वो बाहर जाना पड़ेगा। तो बोले बाबा अरे तुम आप सब लोग अभी इतना तुरंत ब्रज के बाहर जाने का क्यों प्लानिंग कर रहे हैं। अरे बेटा तुम जानते नहीं हो गंगा जी की महिमा कितनी, देखो स्पर्श होने से सांप जैसे निचली योनि का भी इतना बड़ा उद्धार हो गया, हम तो जाना चाहते हैं अपना उद्धार करने के लिए। तो वो भगवान कहते हैं कि ऐसा है आप ना थोड़ा मेरे साथ चलो, आप मेरे साथ चलो। तो वो अभी बालक का जो भाषण है ना वो कैसा सम्मोहिनी भाषण है, कोई बोलेगा टाल नहीं सकते उनको, इतना सा बालक है लेकिन बोलेगा ना, अरे पूरा गोवर्धन का पूजा चेंज कर दिया उन्होंने, इंद्र का पूजा था, बालक बोला नहीं करना है इसका, इंद्र का छोड़ो गोवर्धन का करो, अरे मान लिया उन्होंने इतनी बड़ी बात। बाद में भी मालूम है कितना बड़ा संकट आया उसकी वजह से, लेकिन वो जितना मधुर भाषण करते हैं ना वो कोई बड़ा बड़ा बुजुर्ग के बुजुर्ग भी ब्रजवासी हो ना वो बात टाल नहीं सकता है। नंद बाबा भी टाल नहीं सके, अरे सब इस ब्रजवासियों को लेकर जो है ना उनके पीछे पीछे बालक के पीछे गए और वो गोवर्धन के बीच में जाके खड़े हो गए। अरे आपके अब देखो क्या होता है, सबके आगे बालक कृष्ण खड़े हैं, सबके पीछे सब लोग ब्रजवासी बड़े बड़े औरतें आदमी सब खड़े हैं, सबके आंखों के सामने इनके हृदय से गंगा जी प्रकट हो गई, देवी रूप में, पानी रूप में नहीं देवी रूप में, चतुर्भुज और मगरमच्छ में बैठी हुई है, उसके सपने देखा उसके हृदय से प्रकट हुई और सामने आकर फिर उसकी तरफ मुंह करके हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, अरे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, स्वयं साक्षात गंगा देवी हमारे कन्हैया के हृदय से प्रकट हो गई, अरे चमत्कार यहाँ समाप्त तो नहीं हुआ, उसके आगे वो हाथ जोड़ के बोल रही है भगवान क्या आज्ञा है हमारे लिए, बताओ हम क्या करें सेवा आपकी, और आश्चर्यचकित हो गए। और तीसरा आश्चर्य क्या है, ये भी बड़े ऐड से बोल रहे हैं, मेरी ऐसी आज्ञा है तुम्हारे लिए कि तुम्हारा जल यहाँ पर छोड़ दो, एक बड़ा विशाल तालाब बना दो, हाँ ऐसे ऐड से बोल रहे हैं। अरे वाह हमारा कन्हैया बहुत पावरफुल आदमी है और चौथा आश्चर्य क्या हुआ, पहला आश्चर्य गंगा जी प्रकट, दूसरा आश्चर्य हाथ जोड़ के विनती, तीसरा आश्चर्य इनकी तरफ से आदेश, चौथा आश्चर्य क्या हुआ, गंगा जी ने अपने देह से बहुत दिव्य जल वहां पर अपना गंगा जी का पवित्रतम जल जो विष्णु पद गामिनी, हाँ विष्णु के चरण कमल से निकला हुआ पवित्र जल जो है ना वो विशाल तालाब समुद्र की तरह विशाल तालाब वहां प्रकट हो गया। दिव्य जैसे स्फटिक मणि की तरह चमकता हुआ छलकता हुआ पानी तैयार हो गया और विशाल गंगा। तो मन से पैदा हो गया ना भगवान की, तो नाम पड़ा मानसी गंगा। और गंगा जी ने कहा और क्या आज्ञा है, बोला कुछ आज्ञा नहीं, आज्ञा समाप्त हो गई है, अभी अपनी सेवा में चले जाओ। तो गंगा जी शरीर रूप से तो चली गई लेकिन द्रव रूप से भगवान ने उसको आश्रय दिया। और भगवान ने आश्रय दिया तो विशाल मानसी गंगा उत्पन्न हो गई। और फिर अभी कुंड तो उत्पन्न हो गया, विशाल कुंड समुद्र जैसा। तो एक माध्यम से भगवान ने गंगा जी को श्री वृंदावन धाम में चिरंतन आश्रय दिया। आज भी गंगा जी वहीं पर विश्राम करती है, वहीं रहती है। भगवान के उसके आगे वाले जितनी भी लीलाएं हुई उसका साक्षी वो रही, उसके अंदर भी भगवान ने लीलाएं की। गोवर्धन में जितनी लीलाएं हुई वहाँ पर गंगा जी को दर्शन हुआ। तो उस बहुत विशाल कुंड को जिसको मानसी गंगा के नाम से पुकारते हैं, उसके किनारे में एक देवी भी है मनसा देवी, वो भी वहाँ पर निवास करती है। और उसके किनारे पे ना वो है हरिदेव, भगवान के ना चार स्वरूप हैं, चार देव के रूप में भगवान वहाँ निवास करते हैं। एक है केशव देव मथुरा में, एक है गोविंद देव वृंदावन में, एक है हरिदेव वो जो गोवर्धन में, और एक है एक और देव है जिसका मुझे नाम, एक बलदेव जो दक्षिण तरफ बलदेव के रूप में, चार देव के रूप में भगवान निवास करते हैं। सबसे पहले बलदेव सबसे दक्षिण में, उसके बाद में मथुरा में केशव देव, उसके बाद में गोविंद देव वृंदावन में, उसके आगे गोवर्धन में हरिदेव। तो हरिदेव का मंदिर है और चैतन्य महाप्रभु ने जब वहाँ पर दर्शन किया था तो कहा था कि सबसे पहले मानसी गंगा में स्नान करना चाहिए, और मानसी गंगा में स्नान करके आचमन करके फिर हरिदेव का दर्शन करना चाहिए, और हरिदेव का दर्शन करने के बाद में गोवर्धन की परिक्रमा आरंभ करनी चाहिए, और फिर पूरे घूम के आने के पश्चात फिर जमुना मानसी गंगा में स्नान करना चाहिए और आचमन करना चाहिए और अपने परिक्रमा का समापन करना चाहिए। तो ये विशाल जो कुंड है उसके अंदर भगवान का मुखारविंद भी है, उसके बीच में जैसे गोवर्धन जो है वो पर्वत है, उसके दो जगह पर उसके मुख माने गए हैं। एक मुख जो है वो मानसी गंगा के किनारे हैं मुखारविंद, हमारे प्रभुपाद जी के जो गुरु थे ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उन्होंने उसको प्रमाणित किया है। और एक जो है वो जतिपुरा में है, और उस मुखारविंद को श्रीमान वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने प्रमाणित किया है। तो दोनों प्रमाणित हैं, और मुखारविंद के माध्यम से गोवर्धन जी हमारे भोग को स्वीकार करते हैं। तो ये दोनों प्रमाणित मुखारविंद जो हैं ब्रज में उपस्थित हैं, एक उसके मानसी गंगा के किनारे में हैं। तो भगवान ने इस सुंदर स्थान का उपयोग नौका विहार लीला के लिए किया। उसमें भगवान कहते हैं कि नित्य नौका विहार करते हैं, नित्य प्रति वहाँ पर भगवान नौका में बैठकर गोपियों के साथ विहार करते हैं। तो एक बार क्या हुआ, सब गोपियाँ बरसाने से निकली और उनको जाना था मथुरा, तो वो मथुरा जाते हैं तभी, वो बरसाना जो है ना वो गोवर्धन के उत्तर की दिशा में है, और मथुरा जो है वो बरसाना गोवर्धन के दक्षिण दिशा में है, सबसे दक्षिण में है। तो मथुरा जाने के लिए उत्तर से दक्षिण में आने के लिए बीच में गोवर्धन पर्वत आता है, तो पर्वत को लांग नहीं सकते तो बहुत टाइम लगता है उसके लिए। घाटी भी होती है पर्वत के बीच में पार करने के लिए, लेकिन कभी कभी बोट से जाते हैं, तो बोट से मानसी गंगा में बोट पकड़ने के लिए आते हैं, तो देखते हैं कि बहुत समय हो गया है तो कोई बोटमैन वहाँ पर है ही नहीं नाभिक, तो बहुत ढूंढते हैं और देर हो जाती है उसमें। मटका में दही दूध मक्खन सब लेके आ रहे हैं, उनको बेचना है मथुरा जाके, कोशिश करते हैं कोई मिलता नहीं। तो एक बाद में बहुत देर बाद में एक बुड्ढा एक टूटी फूटी नाव जो है ना पुरानी सी बहुत ही ऐसी जंजर जर्जर ऐसे नाव वाला एक नाभिक मिलता है, ऐसा लेटा हुआ है आराम से। ऐसा नहीं कि भाई सबको यात्रियों को बुला रहे आ जाओ आ जाओ आ जाओ ₹5 पार करा दूंगा, ऐसा नहीं, अपना लेटा हुआ आराम से लेटा है। तो गोपियाँ उसको देखती हैं और कहती हैं कि अरे हमें जाना है, देर हो गई, कोई नाभिक तो है नहीं, चलोगे क्या? तो हाँ बोले चलूँगा, चलने के लिए तो बैठा हूँ। तो क्या लोगे? तो फिर वो तय होता है कि भाई वो इतने मटके लाए ना उसमें से एक मटका हमारा, बाकी सब मटके हम ले जाएंगे बेचेंगे। तय होता है, फिर वो नाविक जो है ना बोट चलाना चालू कर देता है। सब लोग गोपियां बैठ जाती हैं, सज सज के आई हैं, अलंकार पहने हुए हैं, कुछ वस्त्र पहने हुए हैं, मटके धारण किए हुए हैं, सब में भरा हुआ है माल, दूध दही मक्खन का, चलने लगते हैं। अभी कुछ देर लगेगी, आराम से बैठे सब गोपियां। तो ये बुड्ढा जो है वो बोलता है, अरे एक काम करो, मैंने बहुत देर से कुछ खाना नहीं खाया, भूख लग रही है, तो मेरा जो किराया है ना वो दे दो, अभी दे दो, अभी तो मैं पहुंचा दूंगा आपको, लेकिन दे दो। चलो ऐसे कैसे देंगे आपको, अरे आपको तो अभी कुछ शुरू ही किया आपने, बहुत दूर जाना है, अभी पार करना है पूरा। बोले देखो ऐसा है, शक्ति तो है नहीं, बुढ़ा आदमी हूँ मैं, और खिलाओगे तो थोड़ा ताकत आ जाएगा, फिर थोड़ा काम बनेगा तुम्हारा। बोला ठीक है चलो अभी देते हैं, बुढ़ा आदमी बेचारे को क्या करेंगे अभी। तो मक्खन का पात्र जो है उसका जो किराया था वो दे देते उसको। तो वो इतना मक्खन इतना स्वादिष्ट होता है, इतना मीठा होता है, इतना इतना मन लुभावना होता है कि ये थोड़ा खाने के बदले पूरा ही खा देता है, पूरा ही खा जाता है। और फिर वो बात बात धोके चालू करता है अपना, चालू करने के बाद में फिर रुक जाता है। अब पहली बार रुक गया, भूख लग गई, दूसरी बार अभी क्यों रुका है, चलो ना जल्दी, टाइम हो रहा है अपने को। तो बोलता है अभी क्या ना, इतना बढ़िया मक्खन पेट भर के खाया, अभी नींद आ रही है। तो गोपियाँ चिढ़ती है उसके बारे, क्या पागल आदमी हो क्या तुम, भाई हमको देर हो रही है, बोल रहे हैं अंधेरा होने को आ रहा है, तुम अभी एक एक नाटक कर रहे हो। तीसरा उसको जरा भड़कते उसके ऊपर, लेकिन वो बोलता है देखो नींद आ रही है, थोड़ा थोड़ा तो विश्राम करना जरूरी है। तो बोले सो जाओ थोड़ा देर। तो बोलता है कि मुझे सोने के बाद ना वो किसी किसी के हाथ से मालिश करवाने की आदत है, तो तुम लोग सखियाँ हो तो तुम बेटी जैसी हो हमारी, तो कुछ लोग पाँव पे लग जाओ, कुछ हाथ पे लग जाओ, कुछ सर पे लग जाओ, थोड़ा मालिश कर लो तो अच्छा लगेगा, जल्दी नींद पूरी हो जाएगी। तो बहुत क्रोध करती है गोपियाँ। फिर ये उठ जाता है, आगे चलने लगता है। अरे दूसरी बार रुक गया, फिर चल गया, फिर तीसरी बार आगे बीच में गया एकदम, और बोला वापस रुक गया। बोले अभी क्या हो गया। अरे चलो ना भाई, तुम कितना नाटक करते हो। बोलते कि नाटक नहीं कर रहा हूँ, देखो नाव के अंदर पानी आ रहा है, नाव डूबने वाली है, अभी इतना वजन ज़्यादा हो गया तुम्हारी, इतनी गोपियाँ इतने मटके लेकर जा रही हो, मेरी टूटी फूटी नाव है। अरे बाप रे, सब देख रहे हैं पानी अंदर आ रहा है, अभी क्या करें। तो बोले भैया तुम बताओ अभी क्या करना है, तुम्हारा ही तो नाव है, तुम्ही को उपाय पता है, तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा देना। तो ये बोलता है देखो ऐसा है, वजन ज़्यादा हो गया है, वो आप है ना ये सब जो मटके वटके लाए ना वो फेंकने पड़ेंगे आपको। अरे कैसे फेंकेंगे, अरे उसको तो बेचने के लिए जा रहा है, उसी जिस काम के लिए जा रहा है उसी मटकों को फेंकने के बोल रहे हैं। तो बोला फिर मत फेंको, मरो सब लोग जल में डूब के। अभी देखो स्थिति ऐसी है ना कि अभी क्या बोलेंगे, अभी इतने अभी बोट में चढ़ के बीच में ना सरोवर के आगे है, तो फिर वो मुश्किल हो जाता ना। तभी मजबूरी से सारे इतने जो मूल्यवान मटके भरे हुए हैं मक्खन से, दही से, दूध से, सारे फेंक देते हैं। कितना तकलीफ हुआ होगा उनको, देखो आप सोचो, सारे फेंक देते हैं। अभी जो इस काम के लिए आए वो काम ही बेकार हो गया पूरा, अभी तो क्या आगे जाए पीछे जाए। तो वो फिर थोड़ा वापस शुरू कर देते हैं, तो शुरू करने के बाद में फिर रुक जाता है। तो भैया अभी तुम क्या कर रहे हो, भैया तुम केवल रुकने के लिए चला रहे हो कि क्या, तुम्हारा पर्पस क्या है, हमको पहुँचाना है कि नहीं पहुँचाना है। बोलते क्या करूँ, देखो पानी बढ़ रहा है, वजन अभी भी ज़्यादा है। तो बोला अभी क्या है, अभी क्या करें, अरे इतने सारे भारी भारी अलंकार, इतने भारी अलंकार पहन के तुम लोग चल रहे हो, उसका कितना वजन है। तो सारे अलंकार उतार दे, सबको अलंकार फेंकने को मजबूर कर देते। सब लोग अपने अलंकार इतने भी पहन के आए, कान में पहने हैं, सर पे, गले में, कमर में घुंघरू पहने हैं, कंगन पहने, सब उतार के सारे डाल देते हैं। कुछ वजन कम होता है, कुछ नाव ऊपर आ जाती है। और आगे जाके बोलते हैं कि वापस रुक जाते हैं। तो अभी क्या हो गया, मतलब वजन ज़्यादा हो गया है, तो वह क्या करें अभी। तो बोलते हैं कि आप लोगों को बाहर कूदना होगा पानी में। तो गोपियाँ इतना क्रोध होता है उनको, कहते हैं कि पहले हम आपको उठा के फेंकेंगे तो पहले वजन कम हो जाएगा, हम लोग फिर नाव चला देंगे। तो ऐसी बहस होती है कि हमको इतना तंग कर रहे हो, इतना सारा मक्खन मक्खन सब फेंकवा दिया, फिर अलंकार फेंकवा दिया, अभी बोलते वस्त्र फेंक दो, उसके बाद में बोलते अपने आप को फेंक दो, तो अभी तुमको ही फेंक देते हैं। ये बात गुस्सा किस पर आया, उन्होंने कहा कि वस्त्र उतार दो, वस्त्र का भी वजन है तुम्हारा बहुत। तो वस्त्र उतारने के बाद में बहुत चिढ़ गई गोपियाँ, फिर वो उसको फेंकने की बात की उन्होंने। इतने में क्या होगा, बहुत घना घनघोर बादल छा गए, अंधेरा हो गया पूरा। हाँ भाई संध्या तो हो ही नहीं, संध्या हो रही लेकिन ऐसा लगता है कि अंधेरा हो गया, रात हो गई। इतना घना बादल छा गए, गड़गड़ाहट हुई बिजली की, चमकने लगी बिजली और घनघोर वर्षा शुरू हो गई, वर्षा और पानी का, और इतना भयंकर बिजली कड़की ना, इतना जोरदार आवाज हो गई कि सब लोग गोपियां घबर डर गई पूरी। और डर के मारे ना राधा रानी ने तो डर के मारे वो बुड्ढे बाबा को गले लगा दिया, आलिंगन दे दिया उसको पूरा, डर के मारे गले चिपक गई उसकी वो। और जब वो नाभिक के गले चिपक गई ना राधा रानी, तो समझ में आया कि ये नाभिक वाभिक को है नहीं, ये कृष्ण है स्वयं। उसकी वहाँ वो मोर पंख छुपा हुआ देखा फेटे के अंदर, और वो कपड़े के कमर के अंदर मुरली भी छिपाई दिखी, तो सारा फेटा उतार दिया उसका, सारे ऊपर के वस्त्र उतार दिए, और पीताम्बर उधर प्रकट हो गया, मोर मुकुट प्रकट हो गया, और सांवला सा सांवला सलोना जो कृष्ण है वो प्रकट हो गया। तो वो सब जो माहौल था ना पूरा बादल का, बिजली का, गड़गड़ाहट का, डरावना, अचानक गायब हो गया एकदम, तो सुंदर प्रकाश और बहुत सुंदर वातावरण निर्माण हो गया। तो गोपियां सब हंस पड़ी, राधा रानी भी हंस पड़ी, उन्होंने कहा अरे ये क्या चमत्कार किया तुमने। तो कृष्ण कहते हैं कि आज ना ये मानसी गंगा के जल के भीतर मुझे आपको मिलने का, एकांत में मिलने का, दूर ऐसे मिलने का मन था, इसलिए मैंने ये सब चापलूसी किया। तो बोले ठीक है, अभी आनंद है, अभी सब आप मिले हो, चलो नौका विहार करते हैं। तो सब गोपियों के शरीर पर सारे अलंकार प्रकट हो गए, पुनः पूरा सारा श्रृंगार प्रकट हो गया, श्री कृष्ण भगवान पर श्रृंगार प्रकट हो गया, सुंदर सुंदर भोजन के व्यंजन प्रकट हो गए, सुंदर सुंदर फूल प्रकट हो गए, फूलों की मालाएं प्रकट हो गई, सब सुंदर सुंदर वाद्य प्रकट हो गए, भगवान की इच्छा से सब कुछ प्रकट हो गया। और गोपियों ने उनको आरोगा, उनको भोजन कराया बहुत सुंदर, फिर गोपियों ने गीत गाए, गोपियों ने फूलों की माला पहनाई, चरण दबाए भगवान के, और कुछ गोपियों ने नाविक नाव जो टूटी फूटी बूढ़ी सी पुरानी नाव थी वो बड़ी दिव्य प्रकाशित नाव बन गई। हाँ, अनेक दीपक जल रहे उसके ऊपर, अनेक सुंदर प्रकाश निर्माण हो रहा है। और फिर भगवान ने ऐसा सुंदर वातावरण में सब गोपियों ने राधा कृष्ण को बीच में सिंहासन पे बिठाया नाव पे, और सब जगह चारों ओर फैल के हुए गोपियों ने वो नाव चलाई, गीत गाए, नृत्य किया नाव पर, और रात भर उस दिन रात भर जो है वो नौका विहार की लीला चलती रही। और वो भी कुछ विशेष बात नहीं, एक रात तो चल ही सकते नाव के, नाव के अंदर, लेकिन भगवान ने उस एक रात में सभी गोपियों को ब्रह्मा की एक रात तक नौका विहार करने का अनुभव दिलाया। जैसे भगवान ने रास किया था ना, तो भगवान ने ब्रह्मा जी के एक रात के समय तक का रास का अनुभव गोपियों को दिया था। पृथ्वी पर तो एक ही तिथि बदल गई, हाँ 12 घंटे आगे चले गए और डेट चेंज हो गई, तिथि चेंज हो गई, लेकिन उस समय में भगवान ने ब्रह्मा जी का ब्रह्मा जी के रात का समय समेट लिया। तो हमारे गणित के अनुसार वो 432 कोटि साल होते हैं, 432 क्रोर्स ऑफ ईयर्स, उतने सारे ईयर्स का समय जो है उन्होंने 12 घंटे में पृथ्वी के ब्रज के अंदर के 12 घंटे में समेट लिया। और वैसे मानो ब्रह्मा जी के एक रात तक पूरा गोपियां जो है नौका विहार करती रही, संतृप्त रही, बोट पर पर्याप्त मात्रा में भोजन फूल सब कुछ व्यंजन रागदारी नृत्य गायन बहुत सुंदर सा चलता रहा, और इतना सुंदर भगवान ने नौका विहार का आनंद जो है वो गोपियों को दिया। और उसके पश्चात में भगवान का नौका विहार का बहुत ही प्रिय स्थान बना मानसी गंगा। वैसे तो ब्रज में तो हजारों कुंड हैं, हजारों जलाशय हैं, वरुण देव उसको संभालते हैं, और सभी में भगवान ने ये जो नौका विहार किया है, लेकिन उसमें से मानसी गंगा का नौका विहार जो है बहुत प्रसिद्ध है, और बहुत भगवान ने वहाँ पर आनंद लिया है। और सार रूप में समझना है तो इस लीला का अर्थ समझना है तो गंगा जी को भगवान ने बड़ी कृपा की है यमुना जी के निवेदन पर। इसमें समझना यह है कि अगर भगवान का ध्यान हमारे ऊपर आकर्षित करना है तो भगवान के किसी भक्त को ही पकड़ना पड़ेगा, भगवान के किसी भक्त के सहारे सहायता के बिना भगवान का जो है ना वो संपर्क नहीं हो सकता है। आप किसी भी कारण आप पुकारते रहो, सुनते हैं वो, नो डाउट अबाउट इट, प्रतिसाद चाहिए आपको ना, तो भक्त को ही बीच में होना चाहिए। अगर आपको किसी गवर्नमेंट के अधिकारी से कुछ काम करवाना है तो बीच में चाहिए ना कोई चला चपेटा जो एजेंट होता है बीच में, हाँ पैसे लेता है और काम करवाता है, संपर्क करवाता है, तुरंत साइन करवाता है, जब पैसे टिकाते हैं हम लोग तुरंत वो कम कर देता है। तो बीच वाला जो आदमी होता है ना उसको उस सिफारिश के माध्यम से वो आता है सिफारिश करने के लिए, हमारी सिफारिश जो है वो सही जगह पहुंचाता है, क्योंकि उसका वहाँ कांटेक्ट है, हम उससे कांटेक्ट करके वहाँ कांटेक्ट करेंगे तो हमारा काम बन जाता है। उसी तरह से भक्त जो है ना, वो भगवान के परमानेंट एजेंट होते हैं। जो भक्त के द्वारा भगवान को अपना निवेदन पहुँचाता है वो बहुत जल्दी सुना जाता है। तो जमुना जी को गंगा जी ने निवेदन किया, भले छोटी बहन है, हाँ देखो भगवान के भक्त जो होते हैं ना महात्मा होते हैं, वो महात्मा चाहे आपके घर में छोटी बहन के रूप में भी हो सकते हैं, बड़ी बहन के रूप में भी हो सकते हैं, छोटे भाई के रूप में हो सकते हैं, या मामा के रूप में हो सकते हैं, काका के रूप में हो सकते हैं, माँ के रूप में हो सकते हैं, अरे नौकर के रूप में भी हो सकते हैं। कितने ऐसे शास्त्र में उदाहरण है, हाँ हमारे महाराष्ट्र में भी है, घर में नौकर थे वो महान संत निकले बाद में, ठाकुर जी विट्ठल जी प्रकट हो गए उनके लिए। तो भक्त जो है वो किसी भी रूप में आपके सामने, पड़ोसी हो सकता है आपका, दोस्त हो सकता है आपका, ये न के न प्रकार न किसी भी रिश्ते नाते में अनजान या जानते हुए स्थिति में एक भक्त का संपर्क करो और अपना निवेदन भक्त के माध्यम से भगवान को पहुंचा दो। भक्त के माध्यम से जब ही वो अपना निवेदन पहुंचता है ना, तो अपने किए हुए निवेदन से जल्दी सुना जाता है उसको। ये एक हम सीखते हैं इसके अंदर कि यमुना जी की तरफ गंगा जी ने निवेदन किया था, तो गंगा जी ने किया हुआ निवेदन यमुना जी के माध्यम से भगवान ने सुना और उसको रिस्पांस दिया और गंगा जी को परम स्थान दे दिया। एक नंबर। दूसरा नंबर का सीखना यह है कि ब्रज के अंदर सभी तीर्थ स्थान, सभी धाम, सभी चार धाम, जितने भी धामों का वर्णन किया गया है, 68,000 धामों का वर्णन है, वो सभी 68,000 धाम तीर्थ नदियाँ जो है वो ब्रज में निवास प्राप्त कर चुकी हैं, भगवान ने उनको आश्रय दिया है। दुनिया का उद्धार करते हैं वो सब लोग, तीर्थ और नदियाँ और पर्वत, और वो सभी लोग ब्रज में आकर अपना उद्धार कर लेते हैं। अब भगवान भी बड़े प्रेम से उनको ब्रज धाम में चिरंतन आश्रय देते हैं, ये दूसरी बात है। तीसरे हम गंगा जी की महिमा सुनते हैं कि गंगा जी तो परम पावन करने वाली है, विष्णु पद गामिनी है, विष्णु के चरणों से निकलती है, जहाँ जहाँ बहती है वहाँ पर उसके किनारों को भगवान ने तीर्थ स्थान का दर्जा दिया है। उनको कहा ही था, वो आने को तैयार नहीं थे, लेकिन भगवान ने कहा कि आप आ जाओ और बहा करो पृथ्वी पर, संत लोग भी स्नान करेंगे, आपका भी उद्धार हो जाएगा और आपके किनारे का हर स्थान तीर्थ स्थान के रूप में जाना जाएगा, और जो भी पाप आपके अंदर लोग छोड़ेंगे वो संत लोग स्नान करेंगे तो वो पाप भी नष्ट होते जाएंगे। तो ऐसा बहुत सारा उनको प्रलोभन दिया, कन्विंस किया, काउंसलिंग किया, फिर वो यमुना जी गंगा जी पृथ्वी पर आई हैं। तो ब्रज के बाहर जब ये गंगा जी बहती हैं, यमुना जी बहती हैं, तो केवल ना पापों को नष्ट करती हैं, और जैसे ही गंगा जी और यमुना जी ब्रज में प्रवेश करती हैं, तो कहती हैं कि पापों के साथ में वो पुण्य का भी नाश करती हैं, और पाप और पुण्य के साथ में इतना ही नहीं लाभ है उनका, पाप पुण्य का नाश तो करती है लेकिन भगवान कृष्ण का प्रेम भी प्रदान करती है, प्रेम का दान देती है वो। संक्षेप में पुण्य का नाश भी ज़रूरी क्यों है? अरे पाप से ज़्यादा नाश पुण्य का होना चाहिए, क्योंकि पुण्य जो है ना, वो पुण्य करने के बाद में उसका स्वर्ग में जन्म होता है, या तो पृथ्वी में कहीं बढ़िया जन्म मिलता है और बहुत सारा भोगने को मिलता है आनंद को। तो जब पुण्य का फल हम भोगते हैं ना, या तो यहाँ पर बढ़िया जन्म प्राप्त करके, या तो स्वर्ग लोक में जन्म प्राप्त करके वहाँ का ऐश्वर्य हम भोगते हैं पुण्य के कारण, तो भगवान को भूल जाते हैं। सुख में कभी भगवान की याद आती क्या? जब बहुत ऐश्वर्य है, सुख है, पावर है, इन्फ्लुएंस है, तो लोग बहुत आसानी से भक्त नहीं बनते हैं। हाँ, त्वाम अकिंचन गोचरम, जो हृदय से दीन है ना, जो धन के द्वारा और ऐश्वर्य के द्वारा प्रभावित होकर भोग में लगे हुए हैं, ऐसे लोग भगवान का शरण और भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। ऐसे कुंती देवी भागवत में कहती हैं, त्वाम अकिंचन गोचरम, यानी जो सब कुछ धन दौलत ऐश्वर्य होने के बाद भी जब नम्रता से हृदय में अपने जो है ना अकिंचन, यानी हृदय में दीनता का अनुभव करता है, सब कुछ होते हुए भी नम्रता का अनुभव करता है, वो ही भगवान का क्या कहते हैं, परिणाम कारक रीति से इफेक्टिवली भगवान का आश्रय ग्रहण कर सकता है। ऐसे कुंती देवी ने अपनी प्रार्थना में श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद में कहा है। तो भगवान का आश्रय, जो पुण्य के बारे में बात कर रहा था मैं, पुण्य को भी नष्ट करना जरूरी है, क्योंकि पुण्य को अनुभव करते हुए, पुण्य का फल का लाभ लेते हुए, भोग लेते हुए भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए भक्त लोगों की सुख की दुख की व्याख्या कैसी होती है? भक्त लोग कहते हैं सुख वही है जो भगवान के पास पहुंचा दे, निकट पहुंचा दे, और दुख वही है जो भगवान से दूर कर दे। तो हमारी दृष्टि से अगर कोई ऐश्वर्य प्राप्त हो गया, बड़ा पद प्राप्त हो गया, वही बड़ा प्रमोशन हो गया, बहुत धन प्राप्त हो गया, और वो धन और प्रमोशन और ऐश्वर्य अगर भगवान को भुला दे तो उसको अशुभ माना गया है। जो दुनिया में शुभ मानते हैं उसको भक्त लोग अशुभ मानते हैं। अगर वो भगवान को विस्मृति देते हैं, भगवान की विस्मृति दिलाते हैं, और अगर कोई दुख आ गया और बार बार हे भगवान कहाँ हो, सहारा दो, तो दुख को भी शुभ मानते हैं, क्योंकि वो दुख ने आपको भगवान की याद दिलाई है। तो दुख सुख की व्याख्या जो है ना, वो बाहर के लोग अपनी व्याख्या करते हैं भौतिक लाभ और नुकसान के अनुसार, और भक्त लोग, वैष्णव लोग जो भगवान के भजन करते हैं, वो सुख दुख की व्याख्या ऐसे करते हैं कि जो सुख वही है जो भगवान से जोड़ देता है, दुख वही है वो भगवान से अलग कर देता है। तो भौतिक दृष्टि से जब हम सुख को प्राप्त करते हैं तो पुण्य के द्वारा सुख को प्राप्त करते हैं। तो पुण्य को ना भक्त लोग ज़्यादा इकट्ठा नहीं करते, क्योंकि जानते हैं कि ये पुण्य इकट्ठा करेंगे ना तो वो उसको भोगने के लिए स्वर्ग में जाना पड़ेगा, और स्वर्ग में बहुत लंबी आयु होती है और बहुत समय वहाँ बिगड़ता है, और फिर क्या, क्षणे पुण्य मर्त्यलोके विशन्ति, जब वो पुण्य समाप्त होता है ना तो टिकट हमारे समाप्त होते हैं तो वापस पृथ्वी पर आना पड़ता है। जैसे एसएल वर्ड में कैसा होता है, 1000 का पार्ट कूपन निकाले ना, तो 1000 का कूपन जब तक हाथ में आपके कूपन है तब तक आप वहाँ पर गेम खेल सकते हैं, मतलब जिलेबी खा सकते हैं और कुछ पॉपकॉर्न खा सकते हैं, लेकिन कूपन समाप्त हो गए तो आपको एसएल वर्ल्ड के बाहर जाना होता है, वापस नए कूपन खरीदने होते हैं, फिर वापस हम खेल सकते हैं। वैसे स्वर्गलोक में तभी एंट्री होती है जब पुण्य का स्टॉक होता है, और वहाँ जाने से जितने सुख मिलते हैं एक एक पुण्य का स्टॉक समाप्त होता है। जब सारे पुण्य समाप्त होते हैं, क्षणे पुण्ये हाँ मर्त्यलोके विशन्ति, यानी मर्त्यलोक यानी पृथ्वीलोक पर दोबारा जन्म लेना पड़ता है। तो ऐसे पुण्य का लाभ क्या है, सब टेम्पररी बेनिफिट है, उसका क्या लाभ है, उसका दुख भी टेम्पररी है और सुख भी टेम्पररी है। यहाँ पर तो आद्यंतु वंतु कौंते या नतेषु रमते बुधा, भगवान गीता में कहते हैं कि जिस सुख की या जिस सुख की या जिस वस्तु में शुरुआत है और अंत है, जिस भी चीज में शुरुआत होती है किसी की और किसी के बाद में अंत होता है, ऐसे शुरुआत होने वाले अंत होने वाले अशाश्वत टेम्पररी चीज़ों में भक्त लोग जो है, बुद्धिमान लोग जो है, वो रुचि नहीं लेते। आद्य वंतु यानी अंतु कौंते यानी अर्जुन, आद्यंतु वंतु कौंते या न तेषु रमते बुधा, बुधा यानी बुद्धिमान लोग, रमते उसमें रमन नहीं करते, उसमें आनंद नहीं लेते, उसमें रुचि नहीं लेते। तो भक्त लोग क्या चाहते हैं, पाप का भी नाश हो, पुण्य का भी नाश हो और भक्ति मिले। भक्त लोग तो मुक्ति भी नहीं चाहते, क्योंकि तो पाप पुण्य का नाश होते ही मुक्ति मिल जाती है। अरे मुक्ति किसको चाहिए, तो मुक्ति तो हाथ जोड़ के भक्तों के पीछे भागती रहती है, और भक्त जो है भगवान के पीछे भागते रहते हैं। और आप मुक्ति के पीछे भागेंगे मुक्ति दूर भागती है आपसे, और मुक्ति को अगर दुर्लक्ष कर दिया भगवान के पीछे भागेंगे तो भगवान के पीछे मुक्ति भुक्ति सिद्धि सब भागते हैं, और भक्त लोग उनके पूछे मुड़कर देखते भी नहीं उनकी तरफ। ये जो भगवान को प्राप्त कर चुका है उसको, वो जो भगवान स्वयं मुक्ति भुक्ति सिद्धि के स्रोत हैं, उगम है उसके, सारे भंडार मुक्ति सिद्धि के उनके चरणों में पड़े हुए हैं, जिसके पीछे आप लगे हो। तो अगर भगवान को प्राप्त कर रहे हो, भगवान आपके हो गए हो, तो अलग से मुक्ति भुक्ति सिद्धि का अप्लाई करने का जरूरत क्या है, वो स्वयं जो भगवान के हो गए हैं उनके स्वयं उनके पीछे ये भोग ये मुक्ति और ये सिद्धि जो है ना उनके पीछे पीछे भागते हैं। तो यमुना जी गंगा जी जब ब्रज में आते हैं ना तो उनका स्पर्श करने से प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है, पाप पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। इतनी दुर्लभ शक्ति जो है तो यमुना जी और गंगा जी में ब्रज के बाहर नहीं प्राप्त होता है, आप स्नान करेंगे तो, लेकिन ब्रज में अगर गंगा जी में स्नान करेंगे, मानसी गंगा में, ब्रज में अगर यमुना जी में स्नान करेंगे तो प्रेमा भक्ति की प्राप्ति होती है। यही हमारे जीवन का सार है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, उसी लिए हमारा जीवन है, उन्हीं की लीला सुनना है, उनका ही नाम जपना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यही हमारी कथा को हम विश्राम देते हैं, और 5 मिनट बाकी है, अगर कोई किसी को प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।
हाँ, कोई क्वेश्चन करना है तो कर सकते हैं प्रभु जी से, 5 मिनट का टाइम है हमारे पास।
हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था, स्वर्ग में जाते हैं तो फिर वापस
पुण्य खत्म होने के बाद पृथ्वी पर रहना पड़ता है, क्यों डायरेक्ट गोलोक नहीं जा सकते?
गोलोक जाने के लिए स्वर्ग से रास्ता नहीं है, पृथ्वी ऐसा एक केंद्र स्थान है हमारे हमारे ब्रह्मांड का, हमारे ब्रह्मांड का केंद्र स्थान पृथ्वी है, यानी कि सेंट्रल पोजीशन। देखिए आप समझो, आपके पास एक बिल्डिंग है और उसके अंदर 10 मंजिल है और एक ग्राउंड फ्लोर है और उसके नीचे 2 बेसमेंट है, होता है ना आजकल बड़े बड़े बिल्डिंग में। समझो आप 7वें मंजिल पर है और आपको बिल्डिंग के बाहर निकलना है, तो कहाँ से निकलेंगे आप?
नहीं, समझ में आ गया।
हाँ, ग्राउंड फ्लोर निकलेंगे। अब बेसमेंट में है, दो बेसमेंट नंबर 2 में है, और बाहर निकलना है तो कहाँ निकलेंगे? ग्राउंड फ्लोर पे आएंगे। तो ग्राउंड फ्लोर एक ऐसा जगह है जहाँ पर आप एंट्री भी कर सकते हैं, एग्जिट भी कर सकते हैं। तो एग्जिट अगर करना है और वहां से गौलोक जाना है, किधर भी आप स्वर्गलोक जाओ, ब्रह्मालोक जाओ, कहीं पर जाके भोग भोगो, लेकिन आना पड़ता है पृथ्वी पर और पृथ्वी पर से हमको गौलोक का टिकट मिलता है। एक जगह है ब्रह्मालोक, अगर आप ब्रह्मालोक तक कभी पहुंच गए कोई पुण्य करके, तो ब्रह्मालोक से, ब्रह्मा की कृपा से लिखा है शास्त्र में कि ब्रह्मा की कृपा से वहां से भी गौलोक धाम जा सकते हैं, लेकिन उतना वो वेट करने की, वहां जाने की जरूरत क्या है आपको? या पृथ्वी पर जन्म मिला है, इतना सेंट्रल लोकेशन में जन्म मिला है, और पृथ्वी लोक जो है वो स्वर्ग लोकों से भी, ब्रह्मा लोक से भी श्रेष्ठ माना गया है, पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन देवताओं से भी श्रेष्ठ जीवन माना गया है, तो हम लोग सबसे बेस्ट पोजीशन में है और हमारा समय जो भी बेस्ट है, क्योंकि सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग से भी अधिक पतित पावन दयालु युग कलयुग है, जो भगवान का नाम केवल लेकर ही ये मनुष्य जीवन को हम कलयुग में तार सकते हैं।
तो मतलब ये हुआ कि गोलोक जाने का टारगेट नहीं रखना चाहिए, पृथ्वी पर ही भगवान का गुणगान गाते रहना।
नहीं नहीं, देखो ऐसा है प्रभु जी, अभी के स्थिति में जब हम लोग बद्ध अवस्था में हैं, तो जरूर हमको गोलोक जाने का तमन्ना रखना चाहिए, कम से कम इस जंजाल से बाहर निकलने के लिए, है ना। सबसे पहले मुक्ति का इच्छा करना चाहिए, और जब मुक्ति सब प्राप्त होने का समय आएगा तो आपको लगेगा मुक्ति भी कुछ नहीं है, मुक्ति के आगे भी बहुत कुछ है, तो प्रेमा भक्ति प्राप्त करेंगे, गोलोक जाने की इच्छा प्राप्त करेंगे। एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपको लगेगा कि अरे भगवान ने जहाँ रखना है वहाँ रखने दो, इतनी दिव्य स्थिति होती है कि उस दिव्य स्थिति में फिर भगवान पृथ्वी पर रखे, नरक में रखे, स्वर्ग में रखे, अपने पास रखे, जहाँ पर भी रखे, वो ही सबसे बेस्ट होता है। लेकिन आज की बद्ध अवस्था में जब हम जन्म मृत्यु से बंधे हुए हैं, कम से कम मनुष्य को जन्म मृत्यु के अवस्था से मुक्त होकर बाहर निकलने का कोशिश तो करना ही चाहिए, इच्छा भी रखना चाहिए। तो इट्स नॉट रॉन्ग, मोक्ष की इच्छा करना कुछ गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। हाँ, शराब पीने की, व्यभिचार करने की इच्छा से मोक्ष की इच्छा रखना बहुत अच्छी है। और कोई प्रश्न किसी का?
थोड़ा जल्दी पूछिए, क्योंकि क्या है कि प्रभु जी को थोड़ा लेक्चर होता है, थोड़ा बिजी रहते हैं, तो पूछना है तो जल्दी पूछ सकते।
हरे कृष्णा, कोई बात नहीं।
ओके, हरे
कृष्णा।
क्या
कल प्रोग्राम के लिए अनाउंस कीजिए जयदेव प्रभु जी का क्लास के बारे में प्लीज?
यस, कल विश्वरूप प्रभु जी का ही एक लेक्चर है 5 से 6 के बीच।
नहीं, वो 5 बजे का टाइम उधर का है भाई लोग, 5 बजे का टाइम जो है वो दुबई का टाइम है, हमारा टाइम 6:30 है, इंडियन टाइम 6:30 है।
इन द मॉर्निंग,
इन द इवनिंग
ओके, कल 6:30 इवनिंग में है।
हरे कृष्णा।